नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ AI का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGB के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।